राय कमलानंद बहादुर लखनऊ के एक बड़े रईस और ताल्लुकेदार थे। वार्षिक आय 1 लाख के लगभग थी। अमीनाबाद में उनका विशाल भवन था। शहर में उनकी और भी कई कोठरियाँ थीं, पर वह अधिकांश नैनीताल या मसूरी में रहा करते थे। यद्यपि उनकी पत्नी का देहांत उनकी युवावस्था में हो गया, पर उन्होंने दूसरा विवाह न किया था। मित्रों और हित साधकों ने बहुत घेरा, पर यह पुनर्विवाह के बंधन में न पड़े। विवाह का उद्देश्य संतान है, और जब ईश्वर ने उन्हें 1 पुत्र और 2 पुत्रियां प्रदान कर दी तो फिर विवाह करने की क्या जरूरत। उन्होंने अपनी बड़ी लड़की गायत्री का विवाह गोरखपुर के एक बड़े रईस से किया। उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर जब विवाह के 2 ही साल पीछे गायत्री विधवा हो गई, उसके पति को किसी घर के ही प्राणी ने लोभवश विष दे दिया, तो राय साहब ने विद्या को किसी साधारण कुटुंब में ब्याहने का निश्चय किया जहाँ जीवन इतना कंटकमय न हो। यही कारण था कि ज्ञानशंकर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्गीय बाबू रामानंद अभी कुंवारे ही थे। उनकी अवस्था 20 वर्ष से अधिक हो गई थी, पर राय साहब उनका विवाह करने को भी कभी उत्सुक न हुए। वह उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास में कोई कृत्रिम बाधा न डालना चाहते थे, पर शोक, रामानंद घुड़दौड़ में सम्मिलित होने के लिए पूना गए हुए थे। वहाँ घोड़े पर से गिर पड़े। मर्म स्थानों पर कड़ी चोट आ गई। लखनऊ पहुँचने के 2 दिन बाद ही उनका प्राणांत हो गया। राय साहब की सारी सदकल्पनाएं भी नष्ट हो गईं, आशाओं का दीपक बुझ गया। किंतु राय साहब उन प्राणियों में न थे जो शोक संताप से ग्रास बन जाते हैं। इसे विराग कहिए, चाहे प्रेम शिथिलता या चित्त की स्थिरता। 2 ही 4 दिन में उनका पुत्र शोक जीवन की अविश्रांत कर्मधारा में विलीन हो गया। राय साहब बड़े रसिक पुरुष थे। घुड़दौर और शिकार, सरोद और सितार से उन्हें समान प्रेम था। साहित्य और राजनीति के भी ज्ञाता थे। अवस्था 60 वर्ष के लगभग थी, पर इन विषयों में उनका उत्साह लेश मात्र भी क्षीण न हुआ था। अस्तबल में 10-12 चुने हुए घोड़े थे। विविध प्रकार की कई बग्गियां, 2 मोटरकार, 2 हाथी, दर्जनों कुत्ते पाल रखे थे। इनके अतिरिक्त बाज, शिकरे आदि शिकारी चिड़ियों की एक हवाई सेना भी थी। उनके दीवान खाने में अस्त्र शस्त्रों की श्रृंखला देखकर जान पड़ता था मानो शस्त्रालय है। घुड़दौड़ में वह अच्छे अच्छे सहसवारों से पाला मारते थे। शिकार में उनके निशाने अचूक पड़ते थे। पोलो के मैदान में उनकी चपलता और हाथों की सफाई देखकर आश्चर्य होता था। श्रव्य कलाओं में भी वह इससे कम प्रवीण न थे। शाम को जब वह सितार लेकर बैठते तो उनकी सिद्धि पर अच्छे अच्छे उस्ताद भी चकित हो जाते थे। उनके स्वर में अलौकिक माधुर्य था। वे संगीत के सूक्ष्म तत्वों के वेत्ता थे। उनके ध्रुव पद की अलाप सुनकर बड़े बड़े कलावंत भी सिर धुनने लगते थे। काव्य कला में भी उनकी कुशलता और मार्मिकता कवियों को लज्जित कर देती थी। उनकी रचनाएं अच्छे अच्छे कवियों से टक्कर लेती थीं। संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सभी भाषाओं के वे पंडित थे। स्मरण शक्ति विलक्षण थी। कविजनों के सहस्रों शेर, दोहे, कवित्त, पद्य कंठस्थ थे, और बातचीत में वह उनका बड़ी सुरुचि से उपयोग करते थे। इसलिए उनकी बातें सुनने में लोगों को आनंद मिलता था। इधर 10-12 वर्षों से राजनीति में भी प्रविष्ट हो गए थे। कौनसिन भवन में उनका स्थान प्रथम श्रेणी में था। उनकी राय सदैव निर्भीक होती थी। वह अवसर या समय के भक्त न थे। राष्ट्र या शासन के दास न बनकर सर्वदा अपनी विचार शक्ति से काम लेते थे। इसी कारण काउंसिल में उनकी बड़ी शान थी। यद्यपि वह बहुत कम बोलते थे और राजनीति भवन से बाहर उनकी आवाज़ कभी न सुनाई देती, किंतु जब बोलते थे तो अच्छा ही बोलते थे। ज्ञानशंकर को उनकी बुद्धि, चमत्कार और ज्ञान विस्तार पर अचंभा होता था। यदि आँखों देखी बात न होती तो किसी एक व्यक्ति में इतने गुणों की चर्चा सुनकर उन्हें विश्वास न होता। इस सत्संग से उनकी आँखें खुल गई। उन्हें अपनी योग्यता और चतुरता पर बड़ा गर्व था। इन सिद्धियों ने उसे चूर चूर कर दिया। पहला 2 सप्ताह तक तो उन पर श्रद्धा का नशा से छाया रहा। राय साहब जो कुछ कहते थे वह सब उन्हें प्रमाणिक जान पड़ता था। पग पग पर बात बात में उन्हें अपनी त्रुटियां दिखाई देती और लज्जित होना पड़ता। यहाँ तक कि साहित्य और दर्शन में भी जो उनके मुख्य विषय थे, राय साहब के विचारों के मनन पर करने के लिए उन्हें बहुत कुछ सामग्री मिल जाती थी। सबसे बड़े कुतूहल की बात तो यह थी कि ऐसे दारुण शोक के बोझ के नीचे राय साहब क्यों कर सीधे खड़े रह सकते थे। उनके विलास उपवन पर इस दूसरा झोंके का जरा भी असर न दिखाई देता था। किंतु शनै शनै ज्ञानशंकर कुराय साहब की इस भोग्यता से अश्रद्धा होने लगी। आठों पहर अपनी हीनता का अनुभव करना असह्य था। उनके विचार में अब राय साहब का इन आमोद प्रमोद विषयों से लिप्त रहना शोभा नहीं देता था। यावत जीवन विलासिता में लीन रहने के बाद अब उन्हें विरक्त हो जाना चाहिए था। इस आमोद लिप्सा की भी कोई सीमा है, इसे सजीवता नहीं कह सकते, या निश्चलता नहीं, इसे धैर्य कहना भी उपयुक्त है। धैर्य कभी सजीवता और वासना का रूप नहीं धारण करता, वह हृदय पर विरक्ति, उदासीनता और मलिनता का रंग फेर देता है। वह केवल हृदय दाह है जिससे आंसू तक सूख जाता है। वह शोक की अंतिम अवस्था है। कोई योगी, सिद्ध, महात्मा भी जवान बेटे का दाग दिल पर रखते हुए इतना अविचलित नहीं रह सकता। यह नग्न इंद्रियोपासना है। अहंकार ने आत्मा का दमन कर दिया, ममत्व ने हृदय के कोमल भावों का सर्वनाश कर दिया। ज्ञान शंकर को अब राय साहब की एक एक बात में क्षुद्र विलासिता की झलक दिखाई देती। वह उनके प्रत्येक व्यवहार की तीव्र समालोचना की दृष्टि से देखते। किंतु एक महीना गुजर जाने पर भी ज्ञान शंकर ने कभी बनारस जाने की इच्छा नहीं प्रकट की। यद्यपि विद्यावती का उनके साथ जाने पर राजी न होना उनके यहाँ पड़े रहने का अच्छा बहाना था, पर वास्तव में इसका एक दूसरा ही कारण था। इसे अंतःकरण में अभिव्यक्त करने का उन्हें साहस न होता था। गायत्री के कोमल भाव और मृदुल रसमयी बातों का उनके चित्त पर आकर्षण होने लगा था। उसका विकसित लावण्यमय सौंदर्य अज्ञात रूप से उनके हृदय को खींचता जाता था और वो पतंगे की भांति परिणाम से बेखबर इस दीपक की ओर बढ़ते चले जाते थे। उन्हें गायत्री प्रेमाकांक्षा और प्रेमानुरोध की मूर्ति दिखाई देती थी और यह भ्रम उनकी लालसा को और भी उत्तेजित करता रहता था। घर में किसी बड़ी बूढ़ी की न होने के कारण उनका आदर सत्कार गायत्री ही करती थी और ऐसे स्नेह और अनुराग के साथ की ज्ञान शंकर को इसमें प्रेमादेश का रसमय आनंद मिलता था। सुखद कल्पनाएं मनोहर रूप धारण करके उनकी दृष्टि के सामने नृत्य करने लगती थी। उन्हें अपना जीवन कभी इतना सुखमय न मालूम हुआ था। हृदय सागर में कभी ऐसी प्रबल तरंगे न उठी थी। उनका मन केवल प्रेम वासनाओं का आनंद न उठाता था, वह गायत्री की अतुल संपत्ति का भी सुख भोग करता था। उनकी भावी उन्नति का भवन निर्माण हो चुका था। यदि वह इस उद्यान से सुसज्जित हो जाए तो उसकी शोभा कितनी अपूर्व होगी, उनका दृश्य कितना विस्तृत, कितना मनोहर। ज्ञान शंकर की दृष्टि में आत्मसंयम का महत्व बहुत कम था। उनका विचार था, संयम और नियम मानव चरित्र के स्वाभाविक विकास के बाधक हैं। वही पौधा सघन वृक्ष हो सकता है जो समीर और लू, वर्षा और पाले में समान रूप से खड़ा रहे। उसकी वृद्धि के लिए अग्निमय प्रचंड वायु उतनी ही आवश्यक है जितनी शीतल मंद समीर, शुष्कता उतनी ही प्राण पोषक है जितनी आर्द्रता। चरित्रोन्नति के लिए भी विविध प्रकार की परिस्थितियां अनिवार्य हैं। दरिद्रता को काला नाक क्यों समझें? चरित्र संगठन के लिए यह संपत्ति से कहे महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य में दृढ़ता और संकल्प, दया और सहानुभूति के भाव उदय करती है। प्रत्येक अनुभव चरित्र के किसी न किसी अंग की पुष्टि करता है, जब प्राकृतिक नियम है। इसमें कृत्रिम बाधाओं के डालने से चरित्र विषम हो जाता है। यहाँ तक कि क्रोध और ईर्ष्या, असत्य और कपट में भी बहुमूल्य शिक्षा के अंकुर छिपे रहते हैं। जब तक सितार का प्रत्येक तार चोट न खाए, सुरीली ध्वनि नहीं निकल सकती। मनोवृत्तियों को रोकना ईश्वरीय नियमों में हस्तक्षेप करना है। इच्छाओं का दमन करना आत्महत्या के समान है। इससे चरित्र संकुचित हो जाता है। बंधनों के दिन अब नहीं रहे, यह अबाध, उदार, विराट उन्नति का समय है। त्याग और परिष्कार उस समय के लिए उपयुक्त था जब लोग संसार को असार, स्वप्नवत समझते थे। यह सांसारिक उन्नति का काल है। धर्माधर्म का विचार संकीर्णता का द्योतक है। सांसारिक उन्नति हमारा अभीष्ट है। प्रत्येक साधन जो अभीष्ट सिद्धि में हमारा सहायक हो, ग्राह्य है। इन विचारों ने ज्ञान शंकर को विवेक शून्य बना दिया था। हाँ, वर्तमान अवस्था का यह प्रभाव था कि वह निंदा और उपहास से डरते थे। हालांकि यह भी उनके विचार में मानसिक दुर्बलता थी। गायत्री उन स्त्रियों में न थी जिनके लिए पुरुषों का हृदय एक खुला हुआ पृष्ठ होता है। उसका पति एक दुराचारी मनुष्य था, पर गायत्री का कभी उस पर संदेह नहीं हुआ। उसके मनोभावों की तह तक कभी नहीं पहुंची और यद्यपि उसे मरे हुए 3 साल बीत चुके थे, पर वह अभी तक आध्यात्मिक श्रद्धा से उसकी स्मृति की आराधना किया करती थी। उसका निष्कपट हृदय वासनामय प्रेम के रहस्यों से अनभिज्ञ था, किंतु उसके साथ ही सगर्वता उसके स्वभाव का प्रधान अंग थी। वह अपने को उससे कहीं ज़्यादा विवेकशील और मर्मज्ञ समझती थी जितनी वह वास्तव में थी। उसके मनोवेग और विचार जल के नीचे बैठने वाले रोड़े नहीं, सतह पर तैरने वाले बुलबुले थे। ज्ञानशंकर एक रूपवान सौम्य मृदुमुख मनुष्य थे। गायत्री सरल भाव से इन गुणों पर मुग्ध थी। वह उनसे मुस्कुरा कर कहती, तुम्हारी बातों में जादू है, तुम्हारी बातों से कभी मन तृप्त नहीं होता। वह ज्ञानशंकर के सम्मुख विद्या से कहती, ऐसा पति पाकर भी तू अपने भाग्य को नहीं सराहती। यद्यपि ज्ञानशंकर उससे 2-4 ही मास छोटे थे, पर उसकी छोटी बहन के पति थे, इसलिए वह उन्हें छोटे भाई के तुल्य समझती थी। वह उनके लिए अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ आप बनाती, दिन में कई बार जलपान करने के लिए घर में बुलाती थी। उसे धार्मिक और वैज्ञानिक विषयों में विशेष रुचि थी। ज्ञानशंकर से इसी विषय की बातें करने और सुनने में उसे हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वह साली के नाते से प्रथानुसार उनसे दिल्लगी भी करती, उन पर भावमय छोटे करती हंसती भी। मुँह लटकाकर उदास बैठना उसकी आदत न थी। वह हंसमुख, विनयशील, सरल हृदय, विनोद प्रिया रमणी थी, जिसके हृदय में लीला और क्रीड़ा के लिए कहीं जगह न थी। किंतु उसका यह सरल सीधा व्यवहार ज्ञानशंकर की मलिन दृष्टि में परिवर्तित हो जाता था। उज्ज्वलता में वैचित्र और समता में विषमता दिख पड़ती थी। उन्हें गायत्री संकेत द्वारा कहते हुए मालूम होती, आओ इस उजड़े हुए हृदय को आबाद करो, आओ इस अंधकार में कुटीर को आलोकित करो। इस प्रेमावाहन का अनादर करना उनके लिए असाध्य था, परंतु स्वयं उनके हृदय ने गायत्री को यह निमंत्रण नहीं दिया, कभी अपना प्रेम उस पर अर्पण नहीं किया। उन्हें बहुधा क्लब में देर हो जाती, ताश की बाजी अधूरी न छोड़ सकते थे। कभी सैर सपाटे में विलंब हो जाता, किंतु वह स्वयं विकल न होते यही सोचते कि गायत्री विकल हो रही होगी। अग्नि गायत्री के हृदय में जलती थी, उन्हें केवल उसमें हाथ सेकना था। उन्हें इस प्रयास में वे उल्लास होता था जो किसी शिकारी को शिकार में, किसी खिलाड़ी को बाजी के जीत में होता है। यह प्रेम न था, वशीकरण की इच्छा थी। इस इच्छा और प्रेम में बड़ा भेद है। इच्छा अपनी ओर खींचती है, प्रेम स्वयं खींच जाता है। इच्छा में ममत्व है, प्रेम में आत्मसमर्पण। ज्ञानशंकर के हृदय स्थल में यही वशीकरण चेष्टा की लोलें कर रही थी। गायत्री भोली से ही, अज्ञान से ही, पर शनै शनै उसे ज्ञानशंकर से लगाव होता जाता था। यदि कोई भूलकर वे विष खा ले तो उसका असर क्या कुछ न होगा। ज्ञानशंकर को बाहर से आने में देर होती तो उसे बेचैनी होने लगती, किसी काम में जी न लगता। वह अटारी पर चढ़कर उनकी बात जो होती, वह पहले विद्यावती के सामने हंस हंस कर उनसे बातें करती थी। कभी उनसे अकेले भेंट हो जाती तो उसे कोई बात न सूझती थी। अब वो अवस्था न थी, उसकी बातें अब एकांत की खोज में रहती। विद्या की उपस्थिति उन दोनों को मौन बना देती थी। अब वह केवल वैज्ञानिक तथा धार्मिक चर्चाओं पर आबद्ध न होते, बहुधा स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध की मीमांसा किया करते, और कभी कभी ऐसे मार्मिक प्रसंगों का सामना करना पड़ता कि गायत्री लज्जा से सिर झुका लेती। एक दिन संध्या समय गायत्री बगीचे में आराम कुर्सी पर लेटी हुई एक पत्र पढ़ रही थी, जो अभी डाक से आया था। यद्यपि लू का चलना बंद हो गया था, पर गर्मी के मारे बुरा हाल था। प्रत्येक वस्तु से ज्वाला से निकल रही थी। वह पत्र को उठाती थी और फिर गर्मी से विकल होकर रख देती थी। अंत में उसने एक परिचारिका को पंखा झलने के लिए बुलाया और अब पत्र को पढ़ने लगी। उसके मुख्तार आम ने लिखा था, सरकार यहाँ जल्द आए, यहाँ कई ऐसे मामले आ पड़े हैं जो आपके अनुमति के बिना तय नहीं हो सकते। हरिहरपुर के इलाके में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, यह आपको ज्ञात ही है। अब वहाँ के आसामियों से लगान वसूल करना अत्यंत कठिन हो रहा है और सलहवाने छूट की प्रार्थना करते हैं। मैंने जिलाधीश से इस विषय में अनुरोध किया, पर उसका कुछ फल न हुआ। वह अवश्य छूट कर देंगे। यदि आप आकर स्वयं जिलाधीश से मिले तो शायद सफलता हो। यदि श्रीमान राय साहब यहाँ पधारने का कष्ट उठाएं तो निश्चय ही उनका प्रभाव कठिन को सुगम कर दे। असामियों के इस आंदोलन से हलचल मची हुई है, शंका है कि छूट न हुई तो उत्पात होने लगेगा, इसलिए आपका जिलाधीश से साक्षात करना परमावश्यक है। गायत्री सोचने लगी, यह जमींदारी क्या है, जी का जंजाल है। महीने आध महीने के लिए भी कहीं जाऊं तो हाय हाय सी होने लगती है। असामियों में यह धुन न जाने कैसे समा गई कि जहां देखो वहीं उपद्रव करने पर तत्पर दिखाई देते हैं। सरकार को उन पर कड़ा हाथ रखना चाहिए, जरा विश्वास मिली और काबू से बाहर हुए। अगर इस इलाके में असामियों को छूट हो गई तो मेरा 20-25 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। इसी तरह और इलाकों में भी उपद्रव के डर से छूट हो जाए तो मैं तो कहीं की न रहूँ, कुछ वसूल न होगा तो मेरा खर्च कैसे चलेगा। माना कि मुझे इस इलाके की मालगुजारी न देनी पड़ेगी, पर और भी तो कितने ही रुपए पृथक पृथक नामों से देने पड़ते हैं। वह तो देने ही पड़ेंगे। वह किस घर से आवेंगे, छूट भी हो जाए मगर लूंगी आसामियों से ही। पर मेरा जी वहां कैसे लगेगा, यह बातें वहां कहां सुनने को मिलेंगी। अकेले पड़े पड़े ही जी उकताया करेगा। जब तक ज्ञान शंकर यहां रहेंगे तब तक तो मैं गोरखपुर जाती नहीं। हाँ, जब वह चले जाएंगे तो मजबूरी है, नुकसान ही ना होगा। बला से जीवन के दिन से आनंद से तो कट रहे हैं, धर्म और ज्ञान की चर्चा तो सुनने में आती है। कल बाबू साहब मुझसे चिढ़ गए होंगे, लेकिन मेरा मन तो अब भी स्वीकार नहीं करता कि विवाह केवल एक शारीरिक संबंध और सामाजिक व्यवस्था है। और स्वयं कहते हैं कि मानव शरीर का कई सालों में संपूर्णतः रूपांतर हो जाता है, शायद 8 वर्ष कहते थे। यदि विवाह केवल दैहिक संबंध हो तो इस नियमित समय के बाद उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। इसका तो आशय है कि 8 वर्षों के बाद पति और पत्नी इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, एक का दूसरे पर कोई अधिकार नहीं रहता। आज फिर यही प्रश्न उठाऊंगी। लो आप ही आ गए, बोली। कहिए, कहीं जाने को तैयार हैं क्या? ज्ञान, आज यहाँ थिएट्रिकल कंपनी का तमाशा होने वाला है। आपसे पूछने आया हूँ कि आपके लिए जगह रिजर्व करवाता जाऊँ, आज बड़ी भीड़ होगी। गायत्री, विद्या से पूछा, वह जाएगी? ज्ञान, वह तो कहती है कि माया को साथ लेकर जाने में तकलीफ होगी, मैंने भी आग्रह नहीं किया। गायत्री, तो अकेले जाने पर मुझे भी कुछ आनंद ना आएगा। ज्ञान, आप न जाएंगी तो मैं भी न जाऊंगा। गायत्री, तब तो मैं कदापि न जाऊंगी, आपकी बातों में मुझे थिएटर से अधिक आनंद मिलता है। आइए बैठिए, कल की बात अधूरी रह गई थी। आप कहते थे स्त्रियों में आकर्षण शक्ति पुरुषों से अधिक होती है, पर आपने इसका कोई कारण नहीं बताया था। ज्ञान, इसका कारण तो स्पष्ट है, स्त्रियों का जीवन क्षेत्र परिमित होता है और पुरुषों का विस्तृत, इसलिए स्त्रियों की सारी शक्तियाँ केंद्रस्थ हो जाती हैं और पुरुषों की विच्छिन्न। गायत्री, लेकिन ऐसा होता तो पुरुषों को स्त्रियों के अधीन रहना चाहिए था, वह उन पर शासन क्यों कर सकते? ज्ञान, तो क्या आप समझते हैं कि मर्द स्त्रियों पर शासन करते हैं? ऐसी बात नहीं है, वास्तव में मर्द ही स्त्रियों के अधीन होते हैं, स्त्रियाँ उनके जीवन की विधाता होती हैं। देह पर उनका शासन चाहे न हो, हृदय पर इन्हीं का साम्राज्य होता है। गायत्री, तो फिर मर्द इतने निष्ठुर क्यों हो जाते हैं? ज्ञान, मर्दों पर निष्ठुरता का दोष लगाना न्याय विरुद्ध है, वह उस समय तक सिर नहीं उठा सकते जब तक या तो स्त्री स्वयं उन्हें मुक्त न कर दे अथवा किसी दूसरी स्त्री की प्रबल विद्युत शक्ति उन पर प्रभाव न डाले। गायत्री हंसकर, आपने तो सारा दोष स्त्रियों के ही सिर रख दिया। ज्ञान शंकर ने भावुकता से उत्तर दिया, अन्याय तो वह करती हैं, फरियाद कौन सुनेगा। इतने में विद्यावती माया शंकर गोद में लिया कर खड़ी हो गई। माया 4 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक कोई और बच्चा न होने कारण वह शैशवावस्था के आनंद भोगता था। गायत्री ने पूछा, क्यों विद्या, आज थिएटर देखने चलती हो? विद्या, कोई अनुरोध करेगा तो चली चलूंगे, नहीं तो मेरा जी नहीं चाहता। ज्ञान, तुम्हारी ये इच्छा हो तो चलो, मैं अनुरोध नहीं करता। विद्या, तो फिर मैं भी नहीं जाती। गायत्री, मैं अनुरोध करती हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा। बाबूजी, आप जगहें रिजर्व करा लीजिए। 9 बजे रात को तीनों एक फिटन पर बैठकर थिएटर को चले। माया भी साथ था। फिटन कुछ दूर चली गई तो वह पानी पानी चिल्लाने लगा। ज्ञान शंकर ने विद्या से कहा, लड़के को लेकर चली थी तो पानी की एक सुराही क्यों न रख ली? विद्या, क्या जानते थे कि घर से निकलते ही इसे प्यास लग जाएगी। ज्ञान, पानदान रखना तो न भूल गई? विद्या, इसी में तो मैं कहती थी कि मैं न चलूंगी। गायत्री, थिएटर के हाथे में बर्फ पानी सब कुछ मिल जाएगा। माया सुनकर और भी अधीर हो गया, रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। ज्ञान शंकर ने उसे बढ़ावा दिया, वह और भी गला फाड़ फाड़ कर बिलबिलाने लगा। ज्ञान, जब अभी से यह हाल है तो 2 बजे रात तक न जाने क्या होगा। गायत्री, कौन जागता रहेगा, जाते ही सो जाएगा। ज्ञान, गोद में आराम से तो सो सकेगा नहीं, रह रहकर चौंकेगा और रोएगा, सारी सभा घबरा जाएगी, लोग कहेंगे यह पुछल्ला अच्छा साथ लेते आए। विद्या, कोचवान से कह क्यों नहीं देते गाड़ी लौटा दे, मैं न जाऊंगी। ज्ञान, यह सब बातें पहले ही सोच लेनी चाहिए थी ना, गाड़ी यहाँ से लौटेगी तो आते आते 10 बज जाएंगे, आधा तमाशा ही गायब हो जाएगा। वहाँ पहुँच जाए तो जो जी चाहे मैं तमाशा देखना, माया को इसी गाड़ी में पड़े रहने देना, या उचित समझना तो लौट आना। गायत्री, वहाँ तक जाकर तो लौटना अच्छा नहीं लगता। ज्ञान, मैं तो सब कुछ इन्हीं की इच्छा पर छोड़ दिया। गायत्री, क्या वहाँ कोई आराम कुर्सी न मिल जाएगी? विद्या, यह सब झंझट करने की जरूरत ही क्या है, मैं लौट आऊँगी, मैं तमाशा देखने के लिए उत्सुक न थी, तुम्हारी खातिर ही चली आई थी। थिएटर का पंडाल आ गया, खूब जमाव था। ज्ञान शंकर उतर पड़े। गायत्री ने विद्या से उतरने को कहा, पर वह बहुत आग्रह करने पर भी न उठी। कोचवान को पानी लाने को भेजा। इतने में ज्ञान शंकर लपके हुए आए और बोले, भाभी जल्दी कीजिए, घंटी हो गई, तमाशा आरंभ होने वाला है। जब तक माया को पानी पिलाती है आप चलकर बैठ जाइए, नहीं तो शायद जगह ही ना मिले। नेका करवा गायत्री को लिए हुए पंडाल में घुस गए। पहले दर्जे के मर्दाने और जनाने भाग के बीच में केवल एक चिक का पर्दा था। चिक के बाहर ज्ञान शंकर बैठे और चिक के पास ही भीतर गायत्री को बैठा, वहीं दोनों जगहें उन्होंने रिजर्व कर रखी थी। गायत्री जल्दी से गाड़ी से उतर गई, ज्ञान शंकर के पास चली आई थी। विद्या अभी आएगी यह उसे निश्चय था, लेकिन जब उसे बैठे कई मिनट हो गए, विद्या न दिखाई दी और अंत में ज्ञान शंकर ने आकर कहा वह चली गई, तो उसे बड़ा क्षोभ हुआ। समझ गई कि वह रूठ कर चली गई, अपने मन में मुझे ओछी निष्ठुर समझ रही होगी, मुझे भी इसी के साथ लौट जाना चाहिए था। उसके साथ तमाशा देखने में हर्ज नहीं था, लोग यह अनुमान करते कि मैं उसकी खातिर आई हूँ, किंतु उसके लौट जाने पर यह मेरा यहाँ आना सर्वथा अनुचित है। घर की लौंडियाँ और महरियाँ तक हंसेंगी और उनका हंसना यथार्थ है। दादाजी न जाने मन में क्या सोचेंगे, मेरे लिए अब तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, पूजा पाठ, दान और व्रत है। अब विहार और विलास वागन के लिए है, मुझे अवश्य लौट जाना चाहिए, लेकिन बाबूजी से इतनी जल्दी लौटने कहूंगी तो मुझ पर अवश्य झुंझलाएंगे, पछताएंगे कि आह उसके साथ आया, बुरी फंसी, कुछ देर यहाँ बैठे बिना आप किसी तरह छुटकारा न मिलेगा। यह निश्चय करके वह बैठी, लेकिन जब अपने आगे पीछे दृष्टि पड़ी तो वहाँ उसे पल भर बैठना दुस्तर जान पड़ा। समस्त जनाना भाग वेश्याओं से भरा हुआ था, एक से एक सुंदर, एक से एक रंगीन, चारों ओर खस और हीना की लपटें आ रही थी। उनका आभरण और श्रृंगार, उनका ठाट बाट, उनके हाव भाव, उनकी मंद मुस्कान सब गायत्री को भ्रूणोत्पादक प्रतीत होते थे। उसे अपने रूप लावण्य पर घमंड था और इस सौंदर्य सरोवर में वह एक जल कण के समान विलीन हो गई थी। अपने तुच्छता का ज्ञान उसे और भी व्यति व्यस्त करने लगा। नकुलटाएं कितने धीर, कितने निर्लज हैं, इसकी शिकायत नहीं कि उन्होंने क्यों ऐसे पाप में ऐसे नरकीय पथ पर पग रखा। यह अपने पूर्व कर्मों का फल है, दुरावस्था में न जाए न कराए थोड़ा है, लेकिन यह अभिमान क्यों, ये ठलाते किस बिरते पर है। मालूम होता है सब की सब नवाबजादियाँ हों, इन्हें तो शर्म से सिर झुकाए रहना चाहिए था, इनके रूब रूम से दीनता और लज्जा टपकनी चाहिए थी, पर यह ऐसी प्रसन्न है मानो संसार में इनसे सुखी और कोई है ही नहीं। पाप एक करुणाजनक वस्तु है, मानवीय व्यवस्था का द्योतक है, उसे देख कर दया आती है, लेकिन पाप के साथ निर्लज्जता और मदांधता एक पैशाचिक लीला है, दया और धर्म की सीमा से बाहर। गायत्री अब पल भर भी न रह सकी, दया ज्ञान शंकर से बोली, मैं बाहर जाती हूँ, यहाँ नहीं बैठा जाता, मुझे घर पहुँचा दीजिए। उसे संशय था कि ज्ञान शंकर वहाँ ठहरने के लिए आग्रह करेंगे, चलेंगे भी तो क्रुद्ध होकर, पर यह बात न थी। ज्ञान शंकर सहर्ष उठ खड़े हुए, बाहर आकर एक बग्घी किराए पर की और घर चले। गायत्री ने इतनी जल्दी थिएटर से लौट आने की क्षमा मांगी, फिर वेश्याओं की बेशर्मी की चर्चा की, पर ज्ञान शंकर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में एक विषम कल्पना की थी और इस समय उसे कार्य रूप में लाने के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियों को इस प्रकार एकाग्र कर रहे थे मानो किसी नदी में कूद रहे हों। उनका हृदयाकाश मनोविकार की काली घटाओं से आच्छादित हो रहा था जो इधर महीनों से जमा हो रही थी। वह ऐसे ही अवसर के ताक में थे। उन्होंने अपना कार्य क्रम स्थिर कर लिया। लक्षणों से उन्हें गायत्री के सहयोग का भी निश्चय होता जाता था। उसका थिएटर देखने जाने पर राजी हो जाना, विद्या के साथ घर न लौटना, उसके साथ अकेले बग्घी में बैठना, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। कदाचित उन्हें अवसर देने के लिए वह इतनी जल्दी लौटी थी क्योंकि घर की फिटन पर लौटने से काम में विघ्न पड़ने का भय था। ऐसी अनुकूल दशा में आगा पीछा करना उनके विचार में वह का पुरुषता थी जो अभिष्ट सिद्धि की घातक है। उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि पुरुषोचित उदंडता वशीकरण का सिद्धांत मंत्र है। तत्क्षण उनकी विकृत चेष्टा प्रज्वलित हो गई, आंखों से ज्वाला निकलने लगी, रक्त खौलने लगा, सांस वेग से चलने लगी। उन्होंने अपने घुटने से गायत्री की जांघ में एक ठोंक दिया। गायत्री ने तुरंत पैर समेट लिया। उसे कुछ चेष्टा के क्लेश मात्र भी शंका न थी, किंतु एक क्षण के बाद ज्ञान शंकर ने अपने जलते हुए हाथ से उसकी कलाई पकड़कर धीरे से दबा दी। गायत्री ने चौंक कर हाथ खींच लिया मानो किसी विषधर ने काट खाया हो और भयातीत नेत्र से ज्ञान शंकर को देखा। सड़क पर बिजली की लालटेनें जल रही थी, उनके प्रकाश में ज्ञान शंकर के चेहरे पर एक संतप्त उग्रता, एक प्रदीप्त दुस्साहस दिखाई दिया। उसका चित्त अस्थिर हो गया, आंखों में अंधेरा छा गया, सारी देह पसीने से तर हो गई। उसने कातर नेत्रों से बाहर की ओर झांका, समझ न पड़ा कि कहाँ हूँ, कब घर पहुँचूंगी। निर्बल क्रोध की एक लहर नसों में दौड़ गई और आंखों से बह निकली। उसे फिर ज्ञान शंकर को त्यागने का साहस न हुआ, उनसे कुछ कह न सकी। उसका क्रोध भी शांत हो गया, वह संज्ञा सुन्न हो गई, मानो मनोवेग शिथिल पड़ गई। केवल आत्मवेदना का ज्ञान आर्य के समान हृदय को चीर रहा था। उसकी वह वस्तु लुट गई जो उसे जान से भी अधिक प्रिय थी, जो उसके मान की रक्षक, उसके आत्मगौरव की पोषक, धैर्य का आधार और उसके जीवन का अवलंब थी। उसका जी डूबा जाता था। सहसा उसे जान पड़ा कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रही। अब तक उसका ध्यान अपने अपमान के इस बाह्य स्वरूप की ओर नहीं गया था। अब उसे ज्ञात हुआ कि यह केवल मेरा आत्मिक पतन ही नहीं, इसने केवल मेरी आत्मा को कलुषित नहीं किया, वरन मेरी बाह्य प्रतिष्ठा पर भी सर्वनाश कर दिया। इस अवगति ने उसके डूबते हुए हृदय को थाम लिया। गोली खाकर दम तोड़ता हुआ पक्षी भी थोड़ी देर को छुरी देखकर तड़प जाता है। गायत्री जरा संभल गई। उसने ज्ञान शंकर की ओर सजल आंखों से देखा। कहना चाहती थी, जो कुछ तुमने किया उसका बदला तुम्हें परमात्मा देंगे, लेकिन यदि सौजन्य का अल्पांश ही भी रह गया तो मेरी लाज रखना। सतीत्व का नाश तो हो गया, पर लोक सम्मान की रक्षा करना, किंतु शब्द न निकले अश्रु प्रवाह में विलीन हो गए। ज्ञान शंकर को भी मालूम हो गया कि मैंने धोखा खाया। मेरी उद्विग्नता ने सारा काम चौपट कर दिया। अभी तक उन्हें अपनी अधोगति पर लज्जा न आई थी, पर गायत्री की सिसकियां सुनी तो हृदय पर चोट सी लगी। अंतरात्मा जागृत हो गई, शर्म से गर्दन झुक गई, कुवासना लुप्त हो गई, अपने पाप की अधमता का ज्ञान हुआ। ग्लानि और अनुताप के भी शब्द मुंह तक आए, पर व्यक्त न हो सके। गायत्री की ओर देखने का भी हौसला न पड़ा। अपनी मलिनता और दुष्टता उनकी दृष्टि में हीन मालूम होने लगी। हाँ, मैं कैसा दुरात्मा हूँ, मेरे विवेक, ज्ञान और सदिचार ने आत्महिंसा के सामने से झुका दिया। मेरी उच्च शिक्षा और उच्चादर्श का यही परिणाम होना था। अपने नैतिक पतन के ज्ञान ने आत्मवेदना का संचार कर दिया। उनकी आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो गई। दोनों प्राणी खिड़कियों से सिर निकाले रोते रहे, यहाँ तक कि गाड़ी घर पहुँच गई।